खुशबू से प्यारे दोस्तों मुखलिस साथियों, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपकी मेजबान एरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वरतस एशिया की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को अपनी समातों के लिए दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम इरसाल करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय आज मंगल है और आज के प्रोग्राम सुनने से कल नोट फरमा लीजिए हमारे चंद पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu.arparitas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम जरूर सुनिए और प्रोग्राम सुनने से पहले हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए जो कि है आरबी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना, इन पर कमेंट करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्त, यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरबी उर्दू सर्विस के नाम से, प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, जो हमारी दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर है वो भी हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। समय आज के रोज आप समाप्त फरमा सकेंगे प्रोग्राम रगमय सहर और रोशन राहें। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसे फेरोज की जर निगरानी तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पेश खिदमत है सबसे पहले प्रोग्राम नगमय सहर और इसके बाद आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम रोशन राहें।
हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 36 से 43 आयत तक। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा, तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फरसंद है और जवान बदी के फरसंद है और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोककर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानित चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की इस तमसील में यीशु हमें बताता है कि खेत दुनिया है, अच्छे बीज खुदा के फरसंद हैं, जबकि शरीर और नाराज लोग वो हैं जो शैतान के फरसंद हैं। कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं और यही फरिश्ते इस दुनिया के आखिर में शैतान के फरजंदों को पकड़कर आग की भट्टी में डाल देंगे। शैतान ने इस दुनिया में बहुत से फरजंद बना लिए हैं, इसलिए हमें उसे खबरदार रहना है ताकि हम उनके साथ ना मिलें और उसके जैसे काम ना करें, ताकि हम शैतान के फरजंद ना कहलाएं, क्योंकि शैतान के फरजंद आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। बल्कि हम यीशु के फरसंद कहलाएं, हम रास्तबाज बने ताकि अपने बाप की बादशाही में सूरज के मानित चमकें। ऐ खुदावंद, हमें ये फसल बख्श कि हम हर तरह के हालात में, हर मुश्किल, हर आसानी, हर खुशी और हर गमी में تیرے سچے اور راست پاس پیروکار بنے. آمین.
رب دے ماس بنا نو پاک رب دے ماس بنا نو آداب اور سامعین، میں ہوں فرانسس زیویئر اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم عمران. اقدار پر مبنی خوبصورت پروگرام روشن راہیں لیے ہماری جانب سے عقیدت اور خلوص برا سلام قبول کیجیے.
سنائیے بھائی سامعین، کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ امید کرتے ہیں خوش و خرم زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. بھائی ہمارے دوستوں کے لیے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ ہمارے دوست ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور آپس میں خوشیاں بانٹتے رہیں.
سامعین، انسانی زندگی گزارنے کے لیے اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ہر انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہر فرد کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور کما لیا جائے کہ اس کی تمام ضروریات آرام سے پوری ہو سکیں، اس کے خاندان کی، بچوں کی اور دیگر جتنی بھی اہم ضروریات ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں. بعض لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو بہت زیادہ کمانے کی دھن سوار رہتی ہے، اور جب اس طرح کی صورتحال آ جائے کہ انسان اپنی ضروریات سے بالاتر ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لالچ میں گر جائے، تو یہ بڑی ہی خراب صورتحال ہوتی ہے. دوستو، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی ہمیشہ صرف دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، ایک خوف یا دوسرا لالچ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خوف اور لالچ کی کشتی میں کوئی تبھی سوار ہوتا ہے جب وہ ضروریات سے ہٹ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لالچ میں پڑ جائے، اور اس کے نزدیک ضروریات اور خواہشات کا فرق مٹ جائے. سامعین، آج کے دور میں ایسی بہت سی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، ایسے بے شمار لوگ مل سکتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے بھی ہوں گے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی مثالوں پر پورا اترتے ہیں.
اور سامعین، ہم نے اکثر یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ کس طرح لوگ اپنی ضروریات اور لالچ کا فرق مٹانے کے لیے انسانیت سے گر کر جانور بن جاتے ہیں. خیر دوست، بہت سے لوگ اس دنیا سے ایسے گزرے ہیں جن کی مثالیں ہمیں عام ملتی ہیں. اگر آج کے دور میں ان مثالوں پر پورا اترنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تب بھی اب کے ہر انسان کی سوچ یہی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں سے بالا تر ہو کر کچھ کر دکھائے. اور ضرورتوں سے بالا تر ہونا بے شک کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جب یہ حد لالچ تک پہنچتی ہے تو پھر انسان انسانیت کے معراج کو کھونے لگتا ہے. دوست، اسی حوالے سے سکندر اعظم کی مثال پیش کیے دیتے ہیں کہ اگر آپ یقیناً سبھی اس مثال کو جانتے ہی ہیں، ایک مرتبہ پھر سے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں.
سب نے اپنی بادشاہت کے لیے 1,000,000 افراد قتل کرنے والے الیگزینڈر دی گریٹ، جسے ہم سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اس کو بلاخر بستر مرگ پر جب آخری لمحوں میں لالچ اور ضرورت اور ہوس کے درمیان فرق محسوس ہوا تو بے اختیار کہہ اٹھا کہ میرا تابوت میرے طبیب اٹھائیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ کوئی طبیب موت سے نہیں بچا سکتا. میرا تابوت جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں ہیرے اور جواہرات پھینکے جائیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ جب دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، اور پھر میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکال دیے جائیں تاکہ ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ جاتے وقت سکندر اعظم کے بھی ہاتھ خالی تھے.
سامن، ایک ہنری فورڈ تھا، اپنے وقتوں کا امیر ترین شخص تھا. دنیا کی کون سی ایسی سڑک ہوگی جہاں اس کی کمپنی فورڈ کی گاڑی نہ چلی ہو. یہ بیمار ہوا، اور بیمار بھی ایسا کہ حلق سے لکما اترنا مشکل ہو گیا. وہ دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں داخل ہوا، بے شمار مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہوئے، रिपोर्ट्स बनी और फिर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने मिलकर इसका इलाज शुरू किया, मगर हर नुस्खा और हर हरबा यूं नाकाम हुआ कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हेनरी के हल्क से पानी के सिवा कुछ न उतरा। अभी इलाज जारी ही था कि एक रात इंतहाई मायूसी के आलम में उसने खुदकुशी कर ली। सामिन, यह हम बताने वाली बात आपको ये है कि हेनरी की लाश के पास उसके अपने हाथों से लिखा हुआ एक खत भी मिला, जिसका एक जुमला ये था कि जब मेरी सारी दौलत मेरे हल्क से एक लुकमा नीचे ना उतार सकी, तब मुझे पता चला कि जरूरत और लालच क्या होता है।
जी सामिन, ये तो थी बड़ी ही उम्दा किस्म की दो मिसालें जो माजी में हो गुजरी हैं और इन शख्सियात को यकीनन हर कोई जानता है। हमारे लिए वाकई ही ये सोचने की बात है कि हम मुआजना करें अपनी जरूरियात का और अपनी ख्वाहिशात का, और अगर आप अपनी जरूरियात आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं तो जरूर अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कीजिए, लेकिन कभी भी लालच के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जैसे ही आपने लालच करना शुरू कर दिया तो समझ लें कि आपकी जिंदगी के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो जाएंगे। सामिन, लालच की ही एक दूसरी किस्म, या यूं कह लीजिए कि लालच से ही निकली एक दूसरी बुराई कंजूसी है। कंजूसी बाज मामलात में तो बहुत अच्छी समझी जाती है, लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करने के हवाले से और अपनी जरूरियात को पूरा करने के हवाले से कंजूसी करेंगे तो ये बाज़ुकात बड़े ही नुकसान का बाइस बन जाती है। यकीनन बहुत से लोग हमने ऐसे देखे होंगे जो अपनी इंतहाई अहम जरूरियात को पूरा करने में भी बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं। इसी मौजू के हवाले से हमारे पास एक बड़ी ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी मौजूद है जो आपके कोश गुजार करते हैं।
सामिन, बहुत दिनों की बात है कि बगदाद में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अबू कासिम था और वो इंतहाई दर्जे का कंजूस था, एक एक पैसे पर जान देता था। अबू कासिम के पास रुपयों का ढेर लगा हुआ था और वो फिर इन्हें रोज गिनता और बहुत ही ज्यादा खुश होता। दिन रात इसी फिक्र में रहता कि किस तरह इसकी दौलत बढ़ती रहे, मगर घटे नहीं। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम सबको यही कहता कि वो बहुत गरीब आदमी है। दोस्तों, वो रूखी सूखी खाता, उसके कपड़ों पर जगह जगह पैवंद लगे हुए थे और इतने गंदे होते कि देखते ही उससे घिन आना शुरू हो जाती, और उसके जूते, तौबा तौबा, जूते तो ऐसे थे कि देखने से भी घिन आती। भिखारियों के पास भी इससे अच्छे जूते थे। इन जूतों की इतनी दफा मरम्मत हुई थी कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैवंद ही पैवंद दिखाई देते थे। अबू कासिम के दोस्त उसे कहते थे कि मियां, तुमने तो भिखारियों को भी मात दे डाली है, अरे भाई अब तो नए जूते खरीद लो, इनकी जान छोड़ दो। अबू कासिम कहता, अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं।
दोस्तों, हमारी ये कहानी जारी रहेगी। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं।
सामिन, ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं रोशन राहें।
सामिन, आज के प्रोग्राम में हम लालच, हवस और कंजूसी जैसी उन बुराइयों का जिक्र कर रहे हैं जो अक्सर औकात हमारी जिंदगी के लिए बवाल बन जाती हैं। वक्फे से पहले हम आपको कंजूसी के हवाले से ही अबू कासिम नामी एक शख्स की कहानी सुना रहे थे जो कि बहुत अमीर था, लेकिन जितना वो अमीर था उतना ही कंजूस था और उसने अपनी हालत भिखारियों से भी ज्यादा अबतर बना रखी थी, यानी फटे पुराने कपड़े, रूखी सूखी रोटी खाना और सबसे बढ़कर उसके जूते जो कि पैवंद लग लग कर इंतहाई बद्दे दिखते थे। सामिन, कहानी में क्या होता है आगे और ये अबू कासिम जो है वो किस तरह से कंजूसी की सजा पाता है, समाप्त फरमाइए।
सामिन, अबू कासिम यही जूते पहनकर रोजाना बाजार जाता, पुराना माल बेचता और नया खरीदता और खूब नफा कमाता। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अबू कासिम ने बहुत सी शीशियां खूबसूरत सी नाजुक सी खरीदी। फिर उसने बड़ा उमदा इत्र खरीदा। अबू कासिम शीशियां घर ले आया और इत्र भी। उसने शीशियों में इत्र भरा और खूबसूरत होकर बोला, ये इत्र बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। इसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हमाम में गुसल करना चाहिए। कासिम हमाम में गया तो वहाँ कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने उसके फटे पुराने जूते देखे तो बोले, भाई अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे ले लो, मगर खुदारा ये जूते तब्दील कर लो।
कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर उसने जूते और कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और गुसल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हमाम में नहाने के लिए आ गया। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुसल खाने में चला गया। अबू कासिम गुसल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो उसकी नजर जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों के बजाय बिल्कुल नए जूते रखे हुए थे। अबू कासिम कुछ देर तो सर खुजाता रहा, फिर उसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नए जूते खरीदे हों।
चलो मुफ्त में जूते मिल गए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने जूते पहन लिए और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। अब मजे की बात यह है कि मस्खरे ने अबू कासिम के जूते उठाकर कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिए और कोतवाल के जूते अबू कासिम के कपड़ों के पास रख दिए। कोतवाल बाहर निकला तो अपने जूतों की जगह अबू कासिम के जूते देखकर गुस्से से आग भगोला हो गया। उसके सिपाहियों ने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर जूते न मिले। मिलते कैसे, वो तो अबू कासिम पहनकर चल दिया था। अबू कासिम के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये इसके जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को उसके सामने पेश किया जाए। उसने नए जूते खरीदने के बजाय हमारे जूते चुरा लिए हैं। सिपाहियों ने जाते ही अबू कासिम की मशकें कस ली और उसे घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए।
कोतवाल ने उसे 1,000 रुपए जुर्माना किया और अपने जूते वापस ले लिए और उसके वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से सारे बगदाद में अबू कासिम की बड़ी बदनामी हुई और उसे 1,000 रुपए से हाथ धोने पड़े। उसने सोचा, ये जूते मुसीबत हैं, इन्हें कहीं दूर फेंक देना चाहिए। उसने घराकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था, जूते दरिया में जा गिरे। दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला और मछलियों की बजाय अबू कासिम के जूते फंस गए, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया। वो इसलिए कि जूतों में जगह जगह कीलें बाहर निकली हुई थीं। मछेरा गुस्से में आ गया। उसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास इतर की शीशियां पड़ी थीं। जूते पटाख से शीशियों पर गिरे। शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं और सारा इतर भी बह गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़कर बैठ गया।
सामिन, उसका सैकड़ों का नुकसान हो गया था। अब तो इन जूतों की शक्ल से भी उसे नफरत हो गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना इसे ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहां से किसी को भी ये न मिले। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, जमीन में इसने दबा दूं। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड़ा खोदने लगा। अब पड़ोसी उधर निकल आया। उसने अबू कासिम को गड़ा खोदते हुए देखा तो दिल में कहने लगा कि जरूर इसे कोई खजाना मिला है। जब भी तो ये एक गड़ा खोद रहा है, मैं भी जाकर वजीर को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था कि जब किसी को खजाना मिले तो फौरन हुकूमत को खबर दे दे, वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है? अबू कासिम ने कहा, हजूर खजाना कैसा,
میں تو اپنے جوتے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ وزیر بولا، کوئی جوتے بھی زمین میں بھلا گاڑتا ہے، ضرور تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔
ابو قاسم بہت چیخا چلایا، قسمیں کھائیں، مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر 10,000 جرمانہ کر دیا۔ ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا، یہ جوتے اس کے لیے عذاب بن گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا تھا اور اس کی ساری جمع پونجی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ سمجھ ہی گیا کہ کنجوسی بہت بری چیز ہے، اور اس نے پہلی ہی فرصت میں جا کر نئے جوتے خریدے، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ سامعین، اپنی ضروریات کے علاوہ ہمارا تو یہ بھی پیغام ہے آپ دوستوں کے لیے کہ ضرورت مندوں کی بھی دل کھول کر مدد کریں اور کبھی بھی کنجوسی سے کام نہ لیں۔
اور دوست، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ارم عمران اور فرانسس زیویر کو اجازت دیجیے۔
پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔